नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत और आज आपके साथ मैं हूं मुदिता। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मनोज चतुर्वेदी। मनोज, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
तो मनोज, आगे बढ़ने से पहले हम नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। कल गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 35 रन से हराया। ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे। पैरा पावरलिफ्टिंग विश्व कप में भारत की सकीना खातून ने दो कांस्य पदक जीते। निशा दहिया ने विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया और भारतीय खिलाड़ी रमित टंडन मिस्र में विश्व स्क्वाश चैंपियनशिप के पहले दौर में जीत हासिल कर अगले दौर में पहुंचे। मनोज, आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता में मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होना है। ताजा समाचार मिलने तक बारिश के कारण मैच अभी शुरू नहीं हो सका है।
बॉम्बे के लिए तो मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं वो मतलब दौड़ से, तो उनको तो बस थोड़ी बहुत अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मतलब जीतने के चाहेंगे वो
जी।
और कलकत्ता टीम भी केकेआर की जहां तक बात है तो मतलब उसका प्लेऑफ में जाना तो करीब करीब पक्का ही है। मेन चीज अब उनके सामने है कि फर्स्ट टू टीमों में रहना, मतलब
जी अभी तक तो अंक तालिका में शीर्ष पर है वो।
हाँ, वैसे भी वो पहली दो टीमों में ही रहना चाहेंगे। पहली दो टीमों में जो भी टीम रहेगी
जी,
राजस्थान और केकेआर दोनों ही मतलब इसके दावेदार हैं
जी,
तो इनको फाइनल में जाने के दो चांस मिलते हैं
जी
ऐसी टीमों को
जी
जो पहली दो टीमें रहती हैं
जी।
तो दोनों इसमें कोशिश करेंगे और इसमें ज्यादा से ज्यादा एक अंक बटा भी, अगर बाय द वे पांच ओवर भी नहीं हो पाते हैं इसमें, पांच पांच ओवर का मैच भी नहीं हो पाता है, वो सब कहते 10:36 तक मैच स्टार्ट हो सकता है
जी,
और वो पांच पांच ओवर का मैच होगा
बिल्कुल,
और पांच ओवर नहीं हो पाएगा तो एक एक प्वाइंट दोनों टीमों में बढ़ जाएगा
जी।
तो 17 पे पहुंच जाएंगे ये
जी,
18 का मतलब ये माना जाता है कि प्ले ऑफ में मतलब क्लियरली पहुंच गई टीम 18 पॉइंट। आज इसलिए केकेआर जीतती अगर ये मैच
बिल्कुल
तो बिल्कुल पक्का हो जाता है, क्योंकि अभी तक कोई भी टीम कंफर्म नहीं है मतलब प्ले ऑफ की।
हाँ।
जबकि मतलब राजस्थान और इसके मतलब 93% चांसेस हैं दोनों के मतलब अभी उसका जो है जीत, पर कंफर्म अभी भी नहीं है
जी।
तो ये अगर जीतते वो तो पहली टीम बनती प्ले ऑफ में पहुंचने वाली
जी बिल्कुल, लेकिन बारिश ने अभी तो व्यवधान पैदा कर दिया है उनके लिए भी। मुंबई की टीम के साथ आपको क्या लगता है, जो ड्रेसिंग रूम का माहौल था असल कारण वही बना है या कुछ और कारण रहे उनके परफॉर्म नहीं कर पाने के?
असल में जिस तरह से बोला, जैसे गुजरात टाइटंस की कप्तानी की हार्दिक पांड्या ने जब
जी,
तो उनके साथ एक यंग टीम थी
जी,
यंग टीम जिस तरह के वो कप्तान है
और बड़ा अच्छा प्रदर्शन उस बीच में रहा टीम का दोनों साल,
एक साल वो विनर रहे
जी, एक साल रनर अप रहे जी।
पर बॉम्बे टीम जो है एक उसमें आपके अंडर में खेल रहा है जैसे इंडिया कैप्टन, एक आपका बेस्ट बॉलर जो दुनिया में बुमराह
जी,
सूर्य कुमार यादव जो बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं टी ट्वेंटी के 360 एंगल पे शॉट्स,
स्टार प्लेयर्स से सजी हुई टीम है जिसको कह सकते हैं
टीम है, तो उसको कंट्रोल करना का तरीका अलग हो सकता है
जी,
वो शायद हार्दिक पांड्या नहीं कर पाए
जी जी।
और एक इसमें दिक्कत आई कि उनको लास्ट मिनट पर जब चेंज किया गया रोहित को,
तो
रोहित का एक बहुत बड़ा फैन बेस है
बिल्कुल बिल्कुल,
और उन्होंने सबसे ज्यादा 5 बार चैंपियन भी बनाया है मुंबई को
जी,
तो वो शायद इसमें बहुत इनको हूट भी किया, तो ये शायद उस तरह अपने उसमें नहीं रहे। आपको मुझे याद है कि जब पहला राजस्थान से मैच हुआ था बॉम्बे का पहला फर्स्ट मैच, उसमें रोहित को अपील करनी पड़ी थी उसके लिए कि भाई आपने हूट ना करें हार्दिक पांड्या को
जी जी बिल्कुल। और कल हुए मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 35 रन से हरा दिया। गुजरात ने चेन्नई के सामने 232 रन का लक्ष्य रखा, जवाब में चेन्नई की टीम 8 विकेट पर 196 रन ही बना सकी। गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 231 रन बनाए। गुजरात के लिए कप्तान शुभमन गिल ने 55 गेंद पर 104 रन बनाए। जबकि साई सुदर्शन ने 51 गेंदों पर 103 रन बनाए। मोहित शर्मा ने 3 और राशिद खान ने 2 विकेट लिए। चेन्नई की ओर से डैरिल मिचेल ने 63 रन और मोइन अली ने 56 रन बनाए। धोनी ने 11 गेंदों पर नाबाद 26 रन बनाए और इस जीत के साथ गुजरात की टीम अंक तालिका में 8वें स्थान पर आ गई है और अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को उसने जिंदा रखा है। चेन्नई की टीम 12 अंकों के साथ 4थे स्थान पर है। कल का मैच शुभमन गिल ने तो कप्तानी पारी खेली ही। एक खिलाड़ी जिसके बारे में कम बात हो रही है लेकिन लगातार वो अपने खेल से प्रभावित कर रहे हैं वो साई सुदर्शन है।
साई सुदर्शन मतलब उनका डोमेस्टिक में तो बहुत ही अच्छा खेले हैं
जी
और बहुत अच्छा खेलते हैं
जी
और खुल के खेलने वाले खिलाड़ियों में है वो
जी।
और जैसे आईपीएल के पूरे सीजन में उन्होंने जब भी मौका मिला है उन्होंने बहुत अच्छे से किया है
जी।
तो लोग उम्मीद भी कर रहे थे कि टीम में आने के इंडियन टीम में आने के लिए
जी
और वो उनको नहीं मिल पाया मौका
बिल्कुल।
उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब सुमन गिल को जो चांस नहीं मिला शायद वो उसका वो उन्होंने दिखाया कि मतलब कि
बिल्कुल लग ऐसा ही रहा
हाँ,
है वो।
तो उन्होंने नहीं किया
जी बिल्कुल। और कल का जो गेम है टर्निंग पॉइंट जो कल के खेल का लग रहा था वो मोहित शर्मा ने जो डैरिल मिचेल और मोइन खान की साझेदारी को ब्रेक किया है लगातार उन दोनों का विकेट लेकर के शायद मैच का टर्निंग पॉइंट वही था।
हाँ बिल्कुल मोहित शर्मा असल में पूरे सीजन में आकर देखें तो मतलब बहुत ही अच्छे इनके लिए बॉलिंग करते हैं और टाइम जब भी जरूरत होती है विकेट की विकेट निकाल के देते हैं
जी।
जबकि जो मोहित शर्मा को नेहरा बोले उसके ऐसे उनको नेट्स पे प्रैक्टिस कराने के बॉलर के तौर पे लेके आए थे मतलब तो बहुत सीनियर खिलाड़ी है बहुत जमाने से खेल रहे हैं मोहित शर्मा पर उन्होंने अपने को साबित किया तो उनको टीम में लिया गया
जी।
और लगातार मतलब खासतौर से मतलब डेथ ओवर्स के तो मतलब बहुत ही स्पेशलिस्ट बॉलर है मतलब
मैच पलटने का एक उनका वो रहा है। और ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में 88.36 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वे केवल 2 सेंटीमीटर से पहले स्थान से चूक गए। हम श्रोताओं को बता दें कि नीरज चोपड़ा का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो 89.94 मीटर का है जो उन्होंने 2022 में स्वीडन में स्टॉकहोम डायमंड लीग में हासिल किया था। आइए सुनते हैं शक्ति की रिपोर्ट।
भारत के स्टार जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज ने अपने छठे प्रयास में 88.63 मीटर दूर भाला फेंका जो उनका बेस्ट थ्रो रहा। चेक रिपब्लिक के जैकब वाडलेज 88.38 मीटर के साथ पहले और ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स तीसरे स्थान पर रहे। दोहा में नीरज चोपड़ा की शुरुआत खराब रही। नीरज का पहला थ्रो फाउल रहा वहीं उनका दूसरा प्रयास 84.93 मीटर रहा। तीसरे प्रयास में नीरज ने 86.24 मीटर दूर जैवलिन फेंका जबकि चौथे प्रयास में 86.18 और पांचवें प्रयास में 82.28 मीटर। छठे और आखिरी प्रयास में उन्होंने 88.36 मीटर दूर भाला फेंका जो कि उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा लेकिन 2 सेंटीमीटर की दूरी से वे पहला स्थान हासिल करने से चूक गए। एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता किशोर जेना ने भी डायमंड लीग में पदार्पण किया हालांकि वे 9वें स्थान पर रहे। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 76.31 मीटर रहा। डायमंड लीग का दूसरा चरण 19 मई को मोराको में होगा। शक्ति सिंह स्पोर्ट्स स्कैन।
तो नीरज चोपड़ा शायद खुद भी निराश होंगे इस प्रदर्शन से।
इस सीजन की शुरुआत है सीजन की शुरुआत में मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता
जी
पर उनका जो टारगेट है 90 मीटर
जी
वो मतलब उस बैरियर को पार करने की जरूर कोशिश करेंगे
जी
क्योंकि अब ओलंपिक करीब है
बिल्कुल तो और बड़ी उम्मीदें हैं उनसे।
अभी उनको 2-3 इवेंट्स में और पार्टिसिपेट करना है
जी
उसमें बेस्ट दिखने लगेगा उनका
जी जी बिल्कुल। और भारत की सकीना खातून ने आज थाईलैंड के पटाया में पैरा पावरलिफ्टिंग विश्व कप 2024 में 2 कांस्य पदक जीते। उन्होंने महिलाओं की 55 किलोग्राम तक की स्पर्धा में 93 किलोग्राम का वजन उठाकर सर्वश्रेष्ठ लिफ्ट और टोटल लिफ्ट श्रेणियों में पदक हासिल किए। अपने उल्लेखनीय प्रदर्शन के बावजूद वो इस वर्ष पैरालंपिक खेलों के लिए स्थान हासिल करने से चूक गईं। इससे पहले पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में भारत के अशोक मलिक ने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 197 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया जबकि पुरुषों के 49 किलोग्राम वर्ग में परमजीत सिंह ने 162 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता। और भारत की निशा दहिया ने कल हुए विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में महिलाओं की फ्रीस्टाइल 68 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया। ये प्रतियोगिता तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित की गई थी और इस्तांबुल प्रतियोगिता पहलवानों के लिए आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए कोटा प्राप्त करने का यह अंतिम अवसर है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
भारतीय महिला पहलवान निशा दहिया ने विश्व ओलंपिक क्वालिफायर में पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया। निशा 68 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। निशा ने बेलारूस की अलीना शाउचुक को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके बाद उन्होंने चेक गणराज्य की एडेला हंजली कोवा को 7-4 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में विश्व चैंपियनशिप की पूर्व कांस्य पदक विजेता और यूरोपीय चैंपियन रोमानिया की अलेक्जेंड्रा एंजेल का सामना करते हुए भारतीय पहलवान ने दबाव से निकलकर 8-4 से जीत हासिल की और इसके साथ ओलंपिक कोटा भी हासिल किया। भारत के लिए ये पांचवा ओलंपिक कोटा है। इसके पहले अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 से भारत का पहला कोटा प्राप्त किया था, जबकि विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम में, अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम में और रितिका हुडा ने पिछले महीने बिश्केक में एशियाई क्वालिफायर में 76 किलोग्राम में कोटा हासिल किया था।
तो मनोज, जैसा कि हमने अभी सुना इस रिपोर्ट में कि ये पांचवा कोटा था और सभी कोटा महिला फ्रीस्टाइल इवेंट में ही आए हैं।
इस बार इंडिया के अभी तक सिर्फ महिला पहलवानों को ही कोटा मिले हैं
जी।
मेंस का भी शुरू हो रहा है, मतलब उनके ट्रायल्स में अभी इंडियन टीम गई हुई है
जी।
तो हो सकता है 3-4 पहलवान उसमें भी आए
जी,
पर अभी तक तो पांचों इन्हीं को मिले हैं
जी। अभी तक पांचों महिलाओं के पास ही हैं और कल हमें पता चल ही चुका था कि ग्रीको रोमन कुश्ती में प्रतिनिधित्व करने की भारत की उम्मीदें समाप्त हो गई हैं। लगातार दूसरा ओलंपिक है जब ग्रीको रोमन कुश्ती में भारत का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। इससे पहले आखिरी बार हमने 2016 में रियो ओलंपिक में ग्रीको रोमन पहलवानों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो वहां पर भी नहीं मिला है घाटा।
ग्रीको रोमन में इंडिया वैसे हमेशा बहुत अच्छा नहीं रहा है, फ्री स्टाइल ही इंडिया की मेन इवेंट रही है
जी।
ग्रीको रोमन में बहुत अच्छे नहीं करते हम लोग परफॉर्म
जी जी। और मिस्र में विश्व स्क्वाश चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी रमित टंडन ने जीत के साथ शुरुआत की है। विश्व नंबर 36 खिलाड़ी रमित ने पहले दौर में अमरीका के फराज खान को पराजित किया। वे इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। रमित का अगला मुकाबला विश्व के 7वें नंबर के खिलाड़ी इंग्लैंड के मोहम्मद एल शोरवागी से होगा। और निशानेबाजी में आज ओलंपियन निशानेबाज मनु भाकर और अनीश भानवाला राइफल और पिस्टल के लिए ओलंपिक चयन ट्रायल में अपनी स्पर्धाओं के क्वालिफिकेशन राउंड में मजबूत स्कोर से शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। भोपाल में चल रहे चयन ट्रायल में आज अनीश ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में 587 अंक के स्कोर से शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि मनु महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 585 अंक से तीसरे स्थान पर रही। शूटिंग में काफी अच्छा अभी लग रहा है हमें, काफी स्थान भी हमने कोटा काफी हासिल कर लिया है। मनु, जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी।
बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छा है और शायद 20 के करीब हम लोग कोटा मिले हैं
जी।
पिस्टल, राइफल और शॉटगन
जी
8-8 कोटा मिल सकते हैं मैक्सिमम एक देश को
जी।
तो इंडिया को मतलब इसमें से 20 मिल चुके हैं टोटल 24 में से
जी।
तो एक बहुत अच्छा वो है, चाइना के शायद इंडिया से ज्यादा है, शायद एक या दो मतलब कोटा ज्यादा मिले हैं
जी।
पर अभी शॉर्ट गन में शायद एक दो कोटा और आ सकते हैं इंडिया के अभी। तो अभी भी उम्मीद है,
उम्मीद है।
अभी टाइम है इसका, शायद मई एंड तक शायद इनका चलेगा मतलब इसमें
जी। बिल्कुल, तो शूटिंग में हमें ओलंपिक में पदक की भी उम्मीदें हैं। तो अब समय इजाजत नहीं दे रहा है हमें आगे चर्चा बढ़ाने का, तो मनोज आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। इसी के साथ मुदिता को दीजिए इजाजत, नमस्कार।